आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार ऋषारी जैन के साथ। 2032 ओलंपिक खेलों के लिए क्वींसलैंड को मिला $1.8 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज। दिल्ली में अस्पतालों के लिए शुरू हुई मुफ्त भोजन सेवा। और ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल के जैक मैक्रे ने वेस्ट बुलडॉग्स के साथ 2027 तक का करार किया तय। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और क्वींसलैंड की प्रीमियर अनास्तासिया पलाशे ने 2032 ओलंपिक के लिए ब्रिस्बेन शहर को तैयार करने के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज के जरिए $1.8 बिलियन की लागत से राज्य के दक्षिण पूर्वी इलाकों का विकास किया जाएगा। श्री मॉरिसन का कहना है कि इस पैकेज से दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड के शहरों को रहने लायक बनाया जाएगा। और सुश्री पलाशे का कहना है कि इस फंडिंग से गैबा स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जा सकेगा।
This city deal is also really important because it's also a catalyst for the Olympic Games. The Olympic Games here in 2032, where we'll see the Gabba completely rebuilt. But right across from the Gabba, of course, is the Cross River Rail and also the new interchange with the Brisbane Metro.
विकलांग व्यक्तियों को रोजगार अवसर मुहैया कराने के लिए फेडरल सरकार एक मुख्यधारा भर्ती योजना में सहयोग देगी। रिक्रूटेबल के नाम से जानी जा रही इस योजना में दुनिया के सबसे बड़े रिक्रूटर रैंडस्टैट और मौजूदा ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर डिलन एल्किट की संस्था गेट स्किल्ड एक्सेस साथ आएंगे। कोल्स, टेनिस ऑस्ट्रेलिया और बेंडिगो बैंक जैसी बड़ी कंपनियां इस 2 साल के पायलट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। श्री एल्कॉट का कहना है कि इस योजना में सिर्फ सामाजिक ही नहीं पर व्यावसायिक फायदा भी है।
We aren't doing it for corporate social responsibility. We aren't doing it for warm and fuzzies in our bellies. We're doing it because they're awesome at what they do. And, you know, we pay them market rates like they deserve. And, you know, we give them career paths like they deserve.
पीटर मेलेनस्कॉस का कहना है कि वे साउथ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रीमियर के तौर पर कोविड-19 नियमों में अनियमितता सुधारना उनके केंद्र में है। यह तब आता है जब साउथ ऑस्ट्रेलिया के निकट संपर्क मास्क नियम और QR कोड चेक इन जैसे कोरोना नियम दूसरे प्रदेशों से भिन्न हैं। 41 वर्षीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने आज यानी सोमवार को प्रीमियर पद की शपथ ग्रहण की। लेबर पार्टी ने राज्य में शनिवार को चुनाव जीते थे। श्री मेलेनस्कॉस का कहना है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया बाकी देश के नियमों के साथ ही चलना चाहता है।
I have an opportunity as the Premier now to fully examine all of the reasons why the policy settings are what they are. If there are good reasons for that, that's fine, but people of our state deserve to know. I think there is a sense within the community at the moment and a consciousness of the fact that we are different to other states and they need to know why, and I want to communicate that to them as effectively as possible, if indeed there is a necessity for its maintenance.
फेडरल सरकार ने सिडनी में जॉइंट पुलिसिंग साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की है। एक संयुक्त वक्तव्य में गृह मंत्री कैरन एंड्रूज और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर रीस कर्शॉ का कहना है कि ये साइबर क्राइम रोकने की राष्ट्रीय योजना का हिस्सा है। श्री कर्शॉ का कहना है कि इस सेंटर से सभी प्रदेशों के लिए सुनियोजित पुलिस कार्य किया जा सकेगा।
We have found from other crime types, like organized crime and terrorism, that bringing together our partners with all of us in one location to tackle these crimes leads to better outcomes. That's the whole point of why we're here today. We want to identify those threats in the cyber realm, make it harder for criminals to do their business, bring the full weight of law enforcement on them, and deliver better outcomes for Australians targeted by these people.
फेडरल सरकार सॉफ्ट प्लास्टिक कचरे के रिसाइकल नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त $60 मिलियन देगी। ये निवेश इस साल के बजट में ही घोषित किया जाएगा। इसी के साथ इस निमित्त अब कुल निवेश राशि $250 मिलियन की हो गई है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि सरकार प्लास्टिक को समुद्र में जाने से रोकने के लिए समर्पित है। प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाकर पानी के रास्ते को रोकता है और समुद्री जीवन भी नष्ट करता है। उनका कहना है कि नई फंडिंग से मुश्किल से रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक की समस्या भी निपटा जा सकेगा। दूसरी तरफ सिडनी के वेस्टमीड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक 2 साल के बच्चे की कोरोना के चलते मृत्यु हो गई है। न्यू साउथ वेल्स ने 3 और कोरोना मृत्यु दर्ज की है। इनमें 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। ये सभी व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक आयु के थे। राज्य में आज 14,970 नए कोरोना संक्रमण दर्ज किए गए हैं। साथ ही 1,163 संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 34 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। उधर विक्टोरिया में आज 7,531 नए कोरोना संक्रमण दर्ज किए गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में 898 नए कोरोना संक्रमण दर्ज किए गए हैं। न्यू साउथ वेल्स के पैरामेडिक्स 24 घंटे की व्यावसायिक कार्यवाही करते हुए अब अपनी पोस्ट छोड़ दूसरे एम्बुलेंस स्टेशन में आपूर्ति करने नहीं जाएंगे। यह यूनियन के उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत बेहतर भर्ती और भत्ते की मांग की जा रही है। यूनियन अतिरिक्त 1500 पैरामेडिक्स की मांग कर रहा है ताकि राज्य में एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम को घटाया जा सके। यूनियन का कहना है कि उनकी मांगें सेवाओं को बेहतर बनाने और समुदाय की बेहतर सेवा करने के लिए हैं। दूसरी ओर न्यू साउथ वेल्स में आई हालिया बाढ़ के 9 पीड़ितों ने बाढ़ में बर्बाद हुए अपने घर के सामान को प्रधानमंत्री के सिडनी स्थित राजकीय आवास के सामने फेंक दिया है। इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने इस आपदा को ठीक से नहीं संभाला और यह कि लोग इससे नाराज हैं। श्री मॉरिसन ने क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए राशि भी समर्पित की है और वादा किया है कि उन्हें नौकरशाही के कारण परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। राज्य और फेडरल सहायता मिलाकर कुल बाढ़ का सहायता कोष लगभग $1.7 बिलियन का है। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने राज्य में आई भीषण बाढ़ पर स्वतंत्र जांच बैठाने का निर्णय लिया है। इस जांच का नेतृत्व हाल में रिटायर हुए पुलिस कमिश्नर माइकल फुलर और प्लानिंग कमिश्नर की अध्यक्ष मैरियो केन करेंगे। ये जांच राज्य की आपदा से निपटने की तैयारी, प्रतिक्रिया और राहत कार्य के स्तर की जांच करेगी। इस बाढ़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और हजारों लोग विस्थापित भी हो गए हैं। यह आयोग 30 जून तक एक इंटरिम रिपोर्ट पेश करेगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के सामने समर्पण का तो सवाल ही नहीं उठता। यह तब आता है जब रूसी सेना ने 21 मार्च मॉस्को के समय से सुबह 5 बजे को मैरियोपोल शहर के समर्पण की अंतिम घड़ी तय कर दी है। श्री ज़ेलेंस्की ने CNN को बताया कि वे इस युद्ध को बिना समझौता वार्ता के अंत नहीं कर सकते।
Unfortunately, our dignity is not going to preserve the lives. So I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, the possibility of talking to Putin. But if these attempts fail, that would mean that this is a third world war.
यूक्रेनियाई अधिकारियों का कहना है कि रूसी सेना ने कब्जे में लिए हुए शहर मैरियोपोल में एक स्कूल पर हमला किया है जिसमें 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। मैरियोपोल सिटी काउंसिल का कहना है कि इस आर्ट स्कूल में 400 बच्चे, महिलाएं और वृद्ध जन शरणार्थी थे जब रूसी बमों ने इस पर हमला किया। अधिकारियों का कहना है कि इमारत ढह गई है और नागरिक अब भी मलबे में दबे हैं। और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 1,549 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि कल से 12% कम है। वहीं इस अवधि में कोरोना वायरस से 31 लोगों की मौत भी हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,652 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं और रिकवरी दर वर्तमान में 98.74 का है। देश में इस समय कुल 25,106 सक्रिय कोरोना मामले हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 181.24 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। दूसरी ओर चक्रवाती आसानी को लेकर उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर दबाव के कारण अंडमान द्वीप समूह और उससे सटे समुद्री क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत के मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सोमवार को भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव उत्तर की ओर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि अभी तक ये दबाव तो जो सोमवार सुबह तक गहरे दबाव में तब्दील हो जाएगा और शाम तक तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा, अगर ये तूफान का रूप लेता है तो इसे चक्रवात आसनी के नाम से जाना जाएगा। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.30 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल लीग में जैक मैकरे ने वेस्टर्न बुलडॉग्स के साथ 2027 के सीजन के आखिर तक के लिए करार तय कर लिया है। ये दिग्गज मिडफील्डर अगर दोबारा बाजार में उतारे जाते तो खासा मांग में रहते, लेकिन इस 5 साल के करार के बाद मुमकिन है कि वे अपना करियर वेस्टर्न बुलडॉग्स के साथ ही खत्म करें। 27 वर्षीय मैकरे ने वेस्टर्न बुलडॉग्स के साथ 2012 में हुए करार के बाद से शायद ही कोई मैच खेलने से छोड़ा हो। इसी के साथ वे ऑल ऑस्ट्रेलियन टीम पर 3 बार खेल चुके हैं। पिछले साल की फाइनल श्रृंखला में वे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल हल्की बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल दिन ढलने के साथ बरसात बढ़ सकती है। यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में धूप ही धूप रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी तेज धूप खिली रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में भी कल धूप ही धूप है। यहां अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल हल्की बरसात के साथ तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।